से क्लास चल रहा था 11 अक्टूबर 1966 मंगलवार को तीसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी सत्युग में भी ऐसे होगा इन ब्रह्मा बाबा का भी तो बाबा होगा ना इनका बच्चा भी होगा ये देखो ये कोई इनका बच्चा नहीं है ये राधे और कृष्ण ये जो स्वयंवर के बाद बने हैं इनमें कृष्ण अलग है और वो राधे अलग है ये स्वयंवर कहाँ की बात है संगम युग की बात है सत्युग त्रेता में वहाँ कोई जश्न नहीं मनाया जाता वहाँ कोई उत्सव आदि नहीं होता है साध माना भी नहीं मनाते हैं तो ये संगम की बात है जो राधे लक्ष्मी बनती है तो अलग घर की क्योंकि राधे है चंद्रवंश की कृष्ण है सूर्यवंश का तो दोनों अलग अलग घर की है ना परंतु ये तो समझना है कि हम इस बाप से जब छोटे हैं तो बोलेंगे बाप से वर्षा लेंगे अभी भी देखो ये सब बच्चे बैठे हैं जो राजा रानी है ये हमारा फादर है इनसे हम वर्षा लेंगे तो जिससे वर्षा लेंगे वो जिस्मानी हुआ ना रूहानी बाप से क्या रूहानी वर्षा लेंगे रूहानी बाप का वर्षा है ज्ञान वो तो ज्ञान और योग का खूट पुंज है निराकार है तो निराकार से निराकारी वर्षा है मिलेगा ना तो ज्ञान को कहेंगे निराकारी वर्षा फिर वही निराकार बाप जब जिस्मानी बाप में प्रवेश करते हैं मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करते हैं तो जिस्मानी हुआ जिस्मानी बाप से जिस्मानी वर्षा मिलेगा अच्छा यहाँ क्या है यहाँ हम आत्मा है और हम वेद के बाप से वर्षा लेते तो ये बात हो गई है बिल्कुल न्यारी एक ही बार होती है ये बात जो वेद के बाप से वेद का वर्षा मिलता है भले बात सत्युग त्रेता में तुमको जो वर्षा मिलता है वो यहाँ के पुरुषार्थ से मिलता है परंतु वो वर्षा मिलता कहाँ से है जरूर कहेंगे कि ये संगम युग के पुरुषार्थ से ही मिलता है बाएं से नहीं कहेंगे कि हमको रूहानी बाप से वर्षा मिलता है रूहानी बाप तो वहाँ होते ही नहीं है रूहानी बाप तो 5000 साल रूहानी दुनिया में ही रहते हैं, तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे रूहानी बाप से वर्षा मिलता है, नहीं। बस ये एक ही संगम युग का समय है जबकि आत्माओं को परमात्मा से बाप का वर्षा मिलता है, और वो भी बेहद के बाप का वर्षा मिलता है। आत्माओं को अभी परमात्मा को याद करना है, कोई भी देर हरी की यादें तोड़नी है, और ये देहधारी की याद जोड़ना एकदम फट से नहीं होगा, जल्दी ही किसी की याद नहीं टूटती है। बस मैं आत्मा हूँ, ये एक ही याद की यात्रा। देखो कहते योग योग योग, बड़ा नामी ग्रामी है। योग भारत का प्राचीन योग है, योग माना ही है, तो किसके साथ योग रखना है? जैसे आशिक है मासूक के साथ योग है उसका बुद्धि का, परंतु हम उसको कहेंगे यार। देखो कैसे उनकी याद में रहते हैं, स्त्री पति की याद में कैसे रहती है, पर याद का अक्षर वो संस्कृत में या हिंदी में है योग, नहीं तो याद अक्षर हिंदुस्तानी अक्षर है, हिंदी अक्षर पक्का है। तो अभी तुमको नॉलेज कौन देते हैं? अभी संगम युग में तुमसे बात कौन करते हैं? है तुमसे बात करने वाला इस समय संगम में मनुष्य है, देवता है, कोई राक्षस है, कौन है? मनुष्य तुमसे बात नहीं करते हैं, कौन करते हैं? सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक मनुष्य मनुष्य से बात करते हैं, सिर्फ इस संगम युग में आकर के रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तो जो कुछ भी तुम समझते हो या समझाते हो, सो भी ये तुम जानते हो कि हम रूह हैं, इन आर्गन सुधारा हम इनको समझाते हैं, तो वो भी तुम जानते हो कि रूह उनका समझता है, जिसके लिए इसका नाम ही रखा हुआ है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तो इस स्पिरिचुअल नॉलेज से ही सच्ची दुनिया बनती है, स्पिरिचुअल नॉलेज यहाँ इस झूठी दुनिया में भी होती है। नाम रख देते हैं फिलॉसफी, अब वो फिलॉसफी कोई आत्मा का ज्ञान थोड़े ही है, ये तो भौतिक दुनिया का ज्ञान है। शास्त्रों के ज्ञान को फिलॉसफी समझते हैं, ये तो आध्यात्म ज्ञान है। आदि माने अंदर, आत्मा ने आत्मा, आत्मा के अंदर का ज्ञान, और आत्मा के अंदर की बात तो परमपिता परमात्मा की सिवाय कौन बताएगा। तो स्पिरिचुअल नॉलेज है ये झूठी भी होती है। यहाँ जो है नॉलेज गीता की, इनको भी लोग स्पिरिचुअल नॉलेज कह देते हैं। इनमें कोई वो लोग फर्क नहीं डालते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज अलग है, आध्यात्मिक ज्ञान अलग है, उनको मालूम ही नहीं है। और वो अन नॉलेज का क्यों नहीं मालूम है कि गीता का भी नॉलेज जिस मानी कृष्ण ने दिया है, दिखलाया है, कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण भगवान है। तो वो देखो, वो कोई रूहानी नॉलेज नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण तो साकार है ना, वो भी तो मनुष्य है ना, भले सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी गुण वाला मनुष्य है, परंतु भगवान तो नहीं है ना। मनुष्य कलाहीन भी होते हैं, 16 कला संपूर्ण भी होते हैं। 16 कला संपूर्ण होते हैं तो देवता कहे जाते हैं, भगवान तो नहीं कहे जाते। भगवान आकर के मनुष्य को नर को नारायण जैसा बनाते हैं, बाकी नारायण को भगवान थोड़े कहेंगे। कृष्ण कहो नारायण कहो, गाते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तो देखो, भले वो कृष्ण दैवी गुण वाला मनुष्य है, परंतु बाप तो कहते हैं मनुष्य तो कोई भी होवे, वो भगवान हो ही नहीं सकता। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर देवता हो, तो भी उनके पास ये स्पिरिचुअल नॉलेज है जिसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, वो सिवाय एक रूहानी बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? मनुष्य मनुष्य को रूहानी नॉलेज क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मनुष्य में मन होता है, मन चलायमान होता है, मनुष्यों का मन चलायमान जरूर होता है। और भगवान, भगवान का मन सोचता है, विचार करता है, मनन चिंतन मंथन करता है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए तीनों कालों को जानता ही है। जो ऑलरेडी जानता है, पहले से ही सब कुछ जानता है, उसको मनन चिंतन करने की क्या दरकार? तो रूहानी नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई दे ही नहीं सकता, बस। और कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं। 11 अक्टूबर 1966 की वाणी का चौथा पेज दूसरी लाइन। इसीलिए तुम्हारे पास से कोई भी कभी भी कोई डिबेट करते हैं, कुछ वार्ता वगैरह करते हैं, बोलो, ये जो तुम भक्ति मार्ग का ज्ञान सुनाए रहे हो शास्त्रों का, वो तो मनुष्यों का बनाया हुआ ज्ञान है। मनुष्यों के ज्ञान में और भगवान के ज्ञान में क्या फर्क है? है? मनुष्यों का ज्ञान अलग अलग प्रकार का है और भगवान एक है, तो भगवान का ज्ञान भी एक ही प्रकार का है। मनुष्यों का बनाया हुआ ज्ञान और भगवान का बनाया हुआ। भगवान के अंदर जो ज्ञान है वो सत्य है, मनुष्यों का ज्ञान जो है वो झूठ है। इसको भक्ति या फिलॉसफी कहते हैं, इसको कोई ज्ञान नहीं कहा जाता है। ज्ञान तो सिर्फ एक है, ज्ञान सागर। उस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, उसे रूहानी ज्ञान कहा जाता है, नॉलेज कहा जाता है। पर है रूहानी नॉलेज तो जो भगवान देते हैं नॉलेज है, वो भगवान खुद कहते हैं भगवान वाद। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान वाच है। दुनिया में एक ही पुस्तक ऐसी है जिसमें भगवान बोल रहे हैं, और दूसरे धर्म ग्रंथ हैं बड़े बड़े प्रसिद्ध है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है, उनमें भगवान नहीं बोल रहे हैं, उनमें मनुष्यों ने बोला है। भगवान में भगवान का ज्ञान जहाँ बोला गया है भगवान के द्वारा, वो एक ही पुस्तक है गीता। नाम ये श्रीमद् भगवत गीता, उसमें है भगवान वाच। तो भगवान वाच और उन्होंने ठीक दिया है जसमानी कृष्ण भगवान वाच, कृष्ण का नाम डाल दिया। और यह है रूहानी ज्ञान। तो देखो ये किसको भी पता नहीं पड़ता है एकदम, अभी और तो कोई शास्त्र है ही नहीं दुनिया में, कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें कोई भगवान वाच हो, जिससे समझा जाए कौन सा भगवान वाच। तो शिव भगवान वाच ये तो है ही गीता में, और एक ही शास्त्र सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है, वो एक ही है बस, और कोई शास्त्र है ही नहीं। क्योंकि इसी शास्त्र से ही तो आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापन हुआ, वो स्थापना की जाती है, और यह है सत्युग के धर्म की स्थापना, प्रथम युग की स्थापना। यह अल्लाह का अव्वल नंबर दीन है, जिसे मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अव्वल नंबर का धर्म है और अव्वल नंबर के सतयुग में आता है। अभी सतयुग के धर्म की स्थापना सिवाय बाप के और यो कोई कर ही नहीं सकेगा और समझा भी नहीं सकेगा, क्योंकि सतयुग सत्य बाप ही स्थापन करेगा। इस दुनिया में तो झूठ खंड में सब झूठे हैं, जो स्वयं ही झूठे हैं वो सचखंड कैसे स्थापन करेंगे। गॉड के लिए कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो जो भगवान सच्चा है वो ही सत्युग स्थापन करता है ना। अभी सत्युग के धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं करेंगे। सत्युग की स्थापना तो गाई जाती है हेवनली गॉड फादर द्वारा। हेवनली गॉड फादर आवेंगे तो है भी स्थापन करेंगे ना। अभी कौन सा फादर? कृष्ण को फादर कहेंगे क्या? क्यों? कृष्ण की तो पूजा ही बच्चे के रूप में की जाती है, बच्चा कैसे फादर हो जाएगा? क्राइस्ट स्थापन करेंगे, हेवन स्थापन करेंगे? नहीं, फादर तो फिर भी उनको कहा जाता है। तो बच्चे ये थोड़ी जो है नॉलेज है और समझ की बात है, इसमें समझदारी बहुत चाहिए। वो मोटी बुद्धि वाले तो ये सभी बातें बड़ी मुश्किल समझते हैं। इसलिए कभी भी कोई मनुष्य बैठ करके बात करे, बोलो ये जो भी शास्त्र वगैरह है वो तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं ना, और मनुष्य तो अनेक हुए हैं, अनेक मनुष्यों ने अपनी अपनी बुद्धि की अनेक बातें बनाई है। कहा भी जाता है तुंडे तुंडे मतरी भिन्न, ये बातें कोई भगवान ने तो नहीं बनाई है शास्त्रों की। शास्त्र मनुष्यों ने बनाए है, मनुष्य साकार होते हैं, भगवान तो निराकार है। कोई कहेंगे व्यास ने, भगवान ने बनाए शास्त्र। व्यास तुम कहेंगे वो भी तो मनुष्य ठहरा ना, कैसे साबित करेंगे? दुनिया के लोग तो कहते हैं व्यास भगवान, तो व्यास भगवान हुआ या मनुष्य हुआ है? क्यों फिर भगवान क्यों कहते हैं व्यास भगवान? अरे व्यास को भी तो दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है ना, जैसे ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाते हैं तो व्यास को भी दाढ़ी मूछ दिखाई गई। वो दाढ़ी मूछ किसको होती है? भगवान को होती है, देवताओं को होती है, है? नहीं, दाढ़ी मूछ तो विकारी मनुष्यों को होती है। तो व्यास तुम कहेंगे वो भी मनुष्य, उनका तो चित्र दिखलाते हैं, कैसा चित्र है? हैं? दाढ़ी मूछ वाला है या क्लीन शेव है? दाढ़ी मूछ वाला है, व्यास है, बैठा है, सुनाते हैं, और दूसरा बैठ करके सुनते हैं। ऐसा व्यास गद्दी पर बैठा हुआ व्यास का एक चित्र भी बना दे, उनका चित्र दिखलाते हैं। नाम पड़ा हुआ है व्यास, नाम का अर्थ क्या हुआ है? विमाने विशेष रूप से, आसमाने बैठ गया, काहे के लिए बैठ गया है? ज्ञान की बातें बनाने के लिए बैठ गया। अब बनी बनाई बातों को ज्ञान थोड़ा ही कहा जाएगा, शास्त्र बनाए कि बने बनाए थे है? सच्चाई तो बनी बनाई है या बनाई जाती है? सच्चाई तो बनी बनाई है। तो देखो व्यास नाम मनुष्य का है, ये कोई आत्मा का नाम नहीं है। आत्मा का ज्ञान कौन देगा है? आत्मा का ज्ञान वो ही देगा जो सदैव आत्मा है। हम तुम सब मनुष्य हैं, मनुष्यों का नाम शरीर का होता है कि आत्मा का होता है? और परमपिता परमात्मा का ज्ञान नाम है बिंदी है, वो बिंदी आत्मा उसका नाम ही है शिव। बिंदु रूपी स्टेज बनती है साकार शरीर के द्वारा, तब वो शिव कहा जाता है, शिवलिंग भी कहा जाता है, शंकरलिंग कहा जाता है क्या है? नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि शंकर है या ब्रह्मा है, ये जो भी है वो सब पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ देवान का संपन्न नहीं हुआ है, देवान से परे नहीं गई है आत्मा। आत्मा को शरीर मिलता है, उनका नाम होता है, बस। यहाँ तो सिर्फ एक ही आत्मा है जिनका नाम शिव रखा हुआ है। और जितनी भी आत्माएं हैं 500-700 करोड़ मनुष्यों की, वो सब उनके शरीर का नाम है या आत्मा का नाम है? शरीर का नाम है। तो जिसका नाम आत्मा का है वो ही आत्मज्ञान सुनाएगा। आत्मा का नाम है इससे साबित होता है वो सदैव आत्मा है, आत्म की स्थिति में रहने वाला है। इस साकार सृष्टि में भी आता है, साकार तन में आता है, साकारी पतित दुनिया में आता है, तो भी सदैव निराकारी स्टेज में रहता है या साकारी बन जाता है? निराकारी स्टेज में रहता है, वो है ही निराकार, तो निराकार ही नाम रख दिया है। आत्मा परमात्मा है। देखो कहा जाता है ना, परमात्मा, परम नाम में परम मन सुप्रीम आत्मा, कहाँ की परमात्मा है? ये टैली कहाँ करेंगे? परमात्मा को इस दुनिया में टैली करेंगे परमात्मा, या परम नाम में टैली करेंगे है? अरे टैली किससे किया जाता है? जो एक जैसे होते हैं तो उनको टैली किया जाता है एक दूसरे से। परम नाम में सब बिंदु बिंदु आत्माएं, तो बिंदु बिंदु आत्माओं में परम कौन है? परे पे परे, जिससे परे कोई दूसरी आत्माएं नहीं जा सकती, वो ही है परमात्मा सुप्रीम आत्मा। आत्माएं तो तुम भी हो, ऐसे तो नहीं है कि तुम कोई आत्मा नहीं हो। पर आत्माओं का भी तो बाप होगा ना, शरीरों का बाप होता है कि नहीं? शरीरों को जन्म देने वाला शरीरधारी बाप। तो शरीर में जो आत्मा रहती है, जिस आत्मा के कारण इंद्रियां चलायमान होती हैं, आंखों में से रोशनी निकलती है, वो आत्मा, उसका बाप कौन? तो जरूर उनको ही कहेंगे सुप्रीम बाबा। और आते भी है कब? एकदम अंत में, जब सब आत्माएं इस सृष्टि पर मनुष्य आत्माएं, कीड़े मकोड़ों जैसी आत्माएं नहीं, सब मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर आ जाती है। बाप उसे कहते बाबा, देखो उसकी पूजा भी होती है निराकार। पूजा किसकी होती है? पूजा का आधार क्या है? हैं? प्योरिटी। तो निराकार जब निराकारी स्टेज में है तब ही उसकी पूजा होती है, और पूजा साकार की होगी या बिंदी की होगी? हैं? साकार की पूजा होगी। बिंदी को कैसे जल चढ़ावेंगे? चढ़ावेंगे नहीं, बिंदी को तो याद किया जा सकता है, भक्ति थोड़ी की जा सकती। तो पूजा भी निराकार की होती है जब वो निराकारी स्टेज में टिक जाता है, तो एक ही निराकार की पूजा होती है ना। अनेक आत्माओं की नहीं पूजा होती है, भले आत्माएं सब अनेक हैं और निराकार हैं, परंतु उनकी पूजा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा निराकार होते हुए भी साकारी स्टेज में रहती है, देवान की स्टेज में रहती है। वो तो एक ही बाप हुआ जो निराकारी स्टेज में टिक जाता है, और तो कोई निराकार होता ही नहीं है। अगर और भी निराकार की पूजा होती होगी तो निराकार की बच्चों की पूजा होती होगी जो निराकारी स्टेज धारण करते हैं, जिन्हें रुद्रमाला कहा जाता है, तो होती है ना बरोबर। रुद्र शिव, फिर उनके बच्चों की होती है जिन्हें रुद्रगण कहा जाता है, तो उनके बच्चों की पूजा होती है। रुद्राक्ष की माला है ना, नहीं तो निराकार आत्माएं तो 550 करोड़ हैं। ये है किसकी ताकत? तो बैठ करके परमात्मा लिंग की और सभी इतनी की बैठ करके रुद्रों की पूजा कहेंगे, रुद्रों की पूजा करेंगे। है तो उनकी पूजा, वास्तव में रुद्रों की पूजा हो नहीं सकती है। वहां तो वो मिट्टी का बना करके क्या बनाते हैं, छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, रुद्रे की रचते हैं। अभी समझते हो ये क्या है, ये किसकी पूजा होती है? रुद्र ज्ञान मेटेरियल की पूजा करती है। जौ, तेल, तिल वगैरह, घी वगैरह, स्थूल चीजें स्वाहा करती है। तो देखो वो सभी मेटेरियल यज्ञ है, यहाँ तुम कुछ मेटेरियल की स्वाहा नहीं करते हो, यहाँ तुम क्या स्वाहा करते हो? मटेरियल यानी मिट्टी बनाए करके और फिर उनके वो चित्र बनाए करके, तो ये सभी मटेरियल पूजा हुई ना। मिट्टी के सारे खिलौने बना करके उनकी पूजा करते हैं। वास्तव में निराकार आत्मा तो कोई बनते ही नहीं। ठिक्कर की पूजा करेंगे, भित्तर की पूजा करेंगे, जिसकी चाहो उसकी बनाते रहते हैं। मिट्टी कहो, पत्थर कहो, कुछ भी कहो वगैरह वगैरह, तो उसको कहा जाता है मेटेरियल पूजा। सभी मेटेरियल को याद करते हैं, भक्ति मार्ग में मेटेरियल को याद करते हैं ना। लिंग को याद करेंगे तो भी पत्थर का याद करेंगे, शालिग्राम याद करेंगे तो भी पत्थर या मिट्टी के याद करेंगे। तो ये देखो मेटेरियल है। अभी इस जड़ को तो तुम याद नहीं करते हो। किस जड़ को? मेटेरियल को। तो जो चैतन्य है उनको जानते हो, इसलिए तुम उनको पूजा नहीं कर सकते, याद करते हो। 11 अक्टूबर 1966 की वाणी का 5वां पेज। तुम अभी मिट्टी की पूजा नहीं करते हो, मिट्टी माना ही दे अभिमान, तुम तो आत्मा को याद करते हो। यानी मिट्टी के लिंगों की कोई अभी पूजा होने की दरकार ही नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग में ये पूजा हुई है तो सामने देखा कि भक्ति मार्ग में सबकी पूजा होती है, सब पूजा ही करते हैं। अभी लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जब कोई जाते हैं, सन्यासी भी जाते हैं, ये बच्चे, तो जो भी जाकर के माथा टेकेंगे वो माथा तो जरूर टेकेंगे, माथा नहीं टेकेंगे तो क्या, क्यों जाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में? क्या चित्र देखने के लिए जाते हैं? नहीं, तो सभी मैटेरियल है ना बच्ची। देखो ये लक्ष्मी नारायण जो चित्र टंगा हुआ है ये भी तो मैटेरियल है ना। फिर कहते हैं गंगा स्नान, गंगा का चित्र भी बनाते हैं, सभी मिट्टी से बनते हैं, तो इनको मेटेरियल कहा जाता है और बाप तो है रूहानी बाप, वो तो अविनाशी चीज है। और ये जो चित्र मूर्तियां वगैरह बनाई जाती है वे क्या है? विनाशी है। बाप के सिवाय जो भी चीज देखने में आती है वो सब विनाशी है। आत्मा के सिवाय जो कुछ भी देखने में आता है वो सब है, आत्मा के सिवाय सब विनाशी। देखो ये सब जो कुछ भी देखने में आता है सिवाय आत्मा के, वो आत्मा ही सिर्फ अमर है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। तो देखो आत्मा तो इमेटेरियल हुई ना, इमेटेरियल माने पांच तत्वों की बनी हुई नहीं है, ये शरीर काय की बने हुए हैं, पांच तत्वों के बने हुए, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, उनको जब मिट्टी से बनते हैं तभी कहते हैं। अभी आत्माओं को ये मेटेरियल शरीर मिला है जिसको फिर कहा जाता है आत्मा का जीव मिला है, हैं? जब शरीर मिलता है तो आत्मा का जीव कहा जाता है, माने जीवित आत्मा, शरीर नहीं है तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। ये जीव काहे का है, ये मेटेरियल का है, तो आत्मा तो सब में होती है ना बच्ची। अभी वो जानवरों में भी आत्मा होती है, आत्मा बिगर तो कोई जीव जंतु कोई होते ही नहीं है। कोई कहेंगे मर गया, अरे मनुष्य मरा उसमें से आत्मा निकल गई, परंतु उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। ये जो कुछ भी हिसाब है या 84 लाख मनुष्यों का बैठ करके हिसाब करें तो वो लग जावे उनको, ये कितना बड़ा कल्प, यहाँ तो कभी भी तुम कोई से भी बात भी नहीं कर सकते हो। बोलो हम कोई भी, तुम जो ज्ञान सुनाते हो चाहते हो हमारे से बात करने के लिए, वो तो शास्त्रों का ज्ञान है और ये शास्त्र तो हम मनुष्यों ने बनाए हैं, कोई निराकार तो आकर के शास्त्र नहीं बनाता है, ये बना बनाया शास्त्र है मनुष्यों का, जो ज्ञान हम सुनना नहीं चाहते। हम ज्ञान किससे सुनते हैं? हम ज्ञान एक निराकार भगवान से सुनते हैं, ज्ञान सागर से सुनते हैं, और वो निराकार ही है, वो एक ही दफा करके अपना ज्ञान सुना करके सदगति देते हैं। ऐसे नहीं बार बार आते हैं संभवाम युग युग शास्त्रों में लिख दिए, हम उनसे सुनते हैं। हम कोई से भी ये शास्त्र वगैरह हम बरोबर जानते हैं, वेद ग्रंथ उपनिषद जानते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की सभी बातें हैं। भक्ति मार्ग से दुर्गति होती आई है, 2500 वर्ष की हिस्ट्री उठा के देख लो, मनुष्यों की मेंटेलिटी की दुर्गति हुई है या सदगति हुई है, विकार बढ़े हैं, मनुष्य विकारी बनते गए हैं या निर्विकारी देवता बने हैं और ही राक्षस बनते गए। अभी हम बातें नहीं सुनते, ये शास्त्रों की बातें हमें सुननी नहीं है। हम अभी जो पतित पावन है उनकी बात सुनते। देखो जब तुम कहते हो कि पतित पावन जिसको याद करते हो, तो याद तो भगवान को करते हो ना, एक बेहद के बाप को याद करते हो ना, तो वो बाप रूहों का बाप है, जिस्मों का बाप नहीं है। आत्मा उस बाप को याद करती है, कहते हैं हे भगवान, किसने कहा? आत्मा ने कहा हे भगवान, हे भगवान। भगवान तो ऊपर में ठहरा ना, ऊपर में क्यों हुआ? कि हम आत्माएं ऊपर में ही रहती, बाबा भी ऊपर में रहते हैं, इसलिए उनको हम हे भगवान कह करके याद करते हैं। अच्छा भगवान का नाम क्या है? क्योंकि आत्माएं तो सबकी एक जैसी होती है, बिंदी बिंदी बिंदी, कैसे मालूम पड़ेगा ये भगवान की बिंदी है? नहीं, ये भगवान का मालूम पड़ता है तब जब वो ज्ञान का सागर आकर के ज्ञान सुनाते हैं। कैसे पता चलता है ये भगवान का ज्ञान है? है? जब ज्ञान सुनाते हैं तो पता चलता है कि ऐसा ज्ञान तो आज तक कोई मनुष्य मात्र ने नहीं सुनाया। आकर के सदगति देते हैं, ज्ञान होता ही है सदगति के लिए। वो ज्ञानी का कि वर्षों से सुनते आए, हजारों वर्षों से सुनते आए, और सदगति किसी की होती नहीं और ही दुर्गति होती जाती है। तभी तो भगवान कहते हैं ना उनको, और कहते भी हैं परमात्मा, फिर कह देते हैं परमात्मा। तो परमात्मा परमात्मा अर्थात परते परे बड़ी हुई आत्मा, वो जो बरोबर बाप हो गया ना सब आत्माओं का बाप। और फिर दूसरी बात, सभी आत्माएं फिर कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स, यानी आत्माएं सभी भाई भाई हैं, क्योंकि वो तो अमर है ना, अमरनाथ बाप के बच्चे हैं। ये तो कोई अमर शरीर तो है नहीं, शरीर तो मरता है फिर जन्म लेता है, तो है ही आत्मा। तो वो आत्मा भाई भाई ब्रदर्स हैं और है ही है, सभी ब्रदर्स को पार्ट मिला हुआ है बजाने का। जो कि सिस्टर्स भी बनती हैं तो ब्रदर्स भी बनते हैं, नहीं तो वास्तव में है सभी आत्माएं एक बाप के बच्चे। तो जबकि आत्माएं सभी बाप के बच्चे हैं, तो आत्माएं जब शरीर धारण करती हैं, तो ये क्या है कि स्वर्ग में सुख और नरक में दुख होता है? ये क्यों हुआ है? हम सभी ब्रदर्स, फिर ये सभी क्यों हुआ कि स्वर्ग में सुखी हैं और नरक में दुखी हैं? क्योंकि हम ब्रदर्स को जब शरीर मिलता है तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो स्वर्ग है, क्योंकि स्वयं स्थिति में रहते हैं तो स्वर्ग महसूस करते हैं। फिर देह में रह करके सुख भोगते हैं या देह से परे होकर सुख भोगते हैं स्वर्ग में, हैं? देह में रहकर सुख भोगते हैं, इसलिए जितने जितने जैसे जैसे सुख भोगते जाते हैं वैसे वैसे आत्मा की स्टेज नीचे आती जाती है। पहले धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, बाद में फिर धीरे धीरे नहीं जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं। तो देखो सत्युग में दो कलाएं कम होती हैं, दो कला क्षीण आत्मा होती है, और त्रेता में छह कलाएं कम हो जाती है, क्योंकि त्रेता में तेजी से नीचे गिरती है आत्मा। तो स्वर्ग में सुख है और फिर हम ब्रदस वहाँ, जब हम स्वर्ग से नीचे की स्टेज में उतरते हैं, स्वयं स्थिति से नीचे देवान में आते हैं तो बहुत दुखी होते जाते हैं। ये दुखी क्यों हुए, उसका कारण क्या हुआ? हाँ, कि आत्मिक स्थिति से नीचे आ गए, स्वयं स्थिति से नीचे आ गए, और पर माना पांच तत्व देह, ये देह पर है ये भी दुखदायी है, तो इसके भान में आ जाते हैं। ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि तो फिर उनको ये समझाया जाता है कि ये जो ज्ञान है और फिर वो भक्ति है, वो ज्ञान है दिन और वो शास्त्रों का ज्ञान है रात, भक्ति ये बना हुआ खेल है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेक गुरुओं से आती है, जिसको दिखाते हैं रावण। रावण को कितने सिर है? 10 सिर। और राम को एक सिर दिखाते हैं। कोई कोई देवताएं भी ऐसे दिखाए हैं जिनको अनेक मुख होते हैं, जैसे कार्तिकेय, कितने मुख? 6 मुख। क्यों? रावण को 10 मुख और कार्तिकेय को 6 मुख क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग के 6 मुख्य धर्म हैं, उन 6 धर्मों में वो भटकता रहता है, इसलिए भक्ति मार्ग की बातें 6 मुख से 6 प्रकार की बातें करता है। तो उसको षण्मुख कह दिया गया, कोई को 4 मुख दिखाते हैं, 5 मुख दिखाते हैं। ये ब्रह्मा को कितने मुख दिखाते हैं? 5 मुख 4 मुख दिखाते हैं। तो ये खेल है एक, ऐसे नहीं कि भगवान कोई सृष्टि रचते हैं तो वो कोई दुख की सृष्टि रचते हैं, नहीं। भगवान है ऊंचते ऊंचे है तो ऊंचते ऊंचे काम करेगा या नीचे काम करेगा? ऊंचते ऊंचे काम सुख की सृष्टि रचता है, वो कोई दुख की सृष्टि थोड़े ही रचता है, नहीं। भगवान जब बाप है सबका, जब आते हैं तो आकर के सुख की सृष्टि रचते हैं, सुख की सृष्टि रूपी मकान बनाते हैं, बुलाते ही हैं बाप को, जबकि मनुष्य दुखी होते हैं कि सुख और दुख का खेल तो हुआ ना। तो भगवान आकर के, एक ही भगवान आकर के सुख देते हैं, और इस दुनिया में सब मनुष्य एक दूसरे को क्या देते हैं? दुख ही देते हैं। जब सुख का समय पूरा होता है तो फिर रावण के कारण, 5 विकारों के कारण दुख शुरू हो जाता है। क्या हुआ 5 विकार? है। देवान आता है तो उसके साथ साथ पांच विकार आते हैं। देवान आया तो काम विकार आया, देवान नहीं है तो काम विकार भी देवताओं में नहीं है। देवान आया तो ये आता है, मैं राजा हूँ, ये रंक है, ये मेरे सामने ऐसी बात क्यों करता है, तो क्रोध आता है। अपन को ऊंच समझते हैं, वो दूसरे को नीचे समझते हैं। आत्मिक स्थिति रहती नहीं है तो देवान के कारण ही क्रोध आता है, लोभ आता है। शरीर को अच्छी तरह से पोषण करने के लिए, अपने शरीर के प्रति विशेष लगाव होने के कारण लोभ भी पैदा होता है, मोह पैदा, मेरा बच्चा, ये मोह पैदा होता है। मेरे पेट से पैदा हुआ, तेरे पेट से थोड़ा ही पैदा हुआ है, तो मेरे पेट से लगा हुआ होने के कारण वो मोह पैदा हो जाता है। और अहंकार, अहंकार मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं राजा हूँ, मिनिस्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, ये मोह पैदा होता है, वो अहंकार पैदा होता है। बाप कहते हैं ये अहंकार तो बिल्कुल छोड़ दो, मैं तुम बच्चों को मच्छरों के मुआफिक ले जाऊंगा। जैसे मच्छर, उसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं, आकर के बैठा और पट से मार दिया, जैसे कोई वैल्यू ही नहीं। तो देखो विकारों के कारण दुख शुरू होते हैं। ये दुख और सुख का तुम खेल समझते हो, ये बनाया किसने है? हैं? ये दुख और सुख का खेल किसने बनाया है? हैं? बाबा ने बनाया? नहीं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। वो सब जब कोई भी मनुष्य बोलेंगे उसको कहेंगे जिस्मानी ज्ञान। मनुष्यों का बोला हुआ जिस्मानी ज्ञान, भगवान का बोला हुआ रूहानी ज्ञान, और तुम्हारा जिस्मानी ज्ञान हम सुनते नहीं चाहते हैं, ऐसे बोल दो, हम इसमें बातचीत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमको हुक्म है कि सिर्फ एक से सुनो। माम एकम याद करो, माम एकम नमस्कुरु, और कोई की नहीं सुनो। अगर तुमको सुनना ही है तो मेरे से ही सुनो, माना और कोई से बातें ही नहीं करें जिंदगी में। बातचीत करना आपस में बंद कर दें? नहीं, बातचीत करें, लेकिन जो बात सुननी है वो टैली करके देखें कि ये भगवान की सुनाई हुई बात है, ये अपनी मनमत सुना रहा है। मान लो ब्रह्मा कुमारी कोई सुनाती है तो क्या देखना है कि ब्रह्मा कुमारी भी जो सुनाती है वो राइट है या रांग है। मुरलियों से टैली करना है। तो सुनना है तो मेरे से सुनो, मैं तुम मनुष्यों की क्यों बातें सुनूंगा। हम जानते हैं कि तुमको कोई रूहानी ज्ञान थोड़े मिला है, रूहानी ज्ञान तो हमको बाप से मिलता है, वो रूहों का बाप है। तुम जो कुछ सुनाते हो वो जिस्मानी ज्ञान सुनाते हो। जिस्मानी ज्ञान को मेटेरियल ज्ञान कहा जाता है। मेटेरियल ज्ञान, ये साइंस का ज्ञान क्या है? है मेटेरियल का ज्ञान है ये साइंसदान कोई आत्मा को थोड़े ही जानते हैं। तो शिव बाबा हमको ज्ञान देते हैं, उसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम्हारी तो मनुष्यों की बनाई हुई फिलॉसफी है, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं कहेंगे हम, हैं डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, और तुम हो डॉक्टर ऑफ भक्ति। समझा। डॉक्टर भी एक दो को कहते हैं, सभी सर्जन हैं, वो हम रूहानी सर्जन के बच्चे हैं, तुम हो जिस्मानी सर्जन के, तुम जिस्मानी सर्जन फिलॉसफी के बच्चे हो, तो फर्क हो जाता है भौतिकवाद में और आध्यात्मवाद में, बड़ा भारी फर्क है। आज दुनिया किस तरफ जा रही है, भारतवासी किस तरफ जा रहे हैं, है भौतिकवाद की तरफ जा रहे हैं या आध्यात्मवाद की तरफ जा रहे हैं? भौतिकवाद की तरफ सारी दुनिया दौड़ रही है। ये भौतिकवाद क्या है? पंचभूतों का ज्ञान है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इनको कंट्रोल किया हुआ है, परंतु ये कैसा ज्ञान है? ये मिथ्या ज्ञान है। आत्मा तो पांच तत्वों से भी जास्ती पावरफुल है, लेकिन पावरफुल तब है जब हम इसकी एकाग्रता में टिके। तुम्हारे ज्ञान में और उनके ज्ञान में बड़ा भारी अंतर है, इसलिए उनसे बात करने से टाइम फालतू हो जाता है, एकदम फालतू, क्योंकि वो अपने भक्ति मार्ग की ही ट्रांट्रा करेंगे और हम उनको कहेंगे ये सब भक्ति मार्ग की बातें। अब ये भक्ति मार्ग की बातें हम नहीं सुनते हैं। भक्ति रावण के अनेक सिरों से आती है और ज्ञान एक भगवान से आता है। बाबा ने कहा है हियर नो विल, यानी भक्ति जिससे दुर्गति होती है, जो भक्ति की बातें मनुष्य सुनाते हैं उन मनुष्यों से बिल्कुल न सुनो। तो तुम जो हमको सुनाएंगे सो शास्त्रों क्या ही वाणी सुनाएंगे, और हम जो सुनाते हैं इसको भगवान आकर के सुनाते हैं, और वो अब भक्ति की बातें मनुष्य सुनाते हैं। तो देखो दोनों में रात दिन का फर्क हो जाता है। किन दोनों बातों में? आध्यात्मिक ज्ञान में और भौतिक ज्ञान में। वो फिलॉसफी हो गई मनुष्यों की बनाई हुई, शास्त्रों से बनाई हुई, और ये हो गया स्पिरिचुअल नॉलेज। ओम शांति।